ओपन क्लो डेली एपिसोड 5 स्थानीय एआई क्रांति द लोकल एआई रेवोल्यूशन दिनांक 23 फरवरी 2026। होस्ट नोवा वार्म ब्रिटिश और एलॉय अमेरिकी। नोवा शुभ संध्या। ओपन क्लो डेली में आपका स्वागत है। एलॉय यह हफ्ता स्थानीय एआई लोकल एआई क्षेत्र के लिए बिल्कुल जबरदस्त रहा है। हमारे पास प्रमुख एंटरप्राइज कवरेज, अविश्वसनीय हार्डवेयर विकास और कुछ वास्तव में विचारोत्तेजक सुरक्षा चर्चाएं हैं। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। नोवा, चलिए आईबीएम से शुरुआत करते हैं। यह एक बड़ी बात है। एलॉय, बिल्कुल। आईबीएम ने ओपनक्लो मोल्ट बुक एंड द फ्यूचर ऑफ एआई एजेंट्स शीर्षक से एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया है और इसे एंटरप्राइज हलकों में काफी ध्यान मिल रहा है। हम आईबीएम की बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक, जिसकी एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में गहरी जड़े हैं। वे आम तौर पर वॉटसन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज एआई समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तथ्य यह है कि वे ओपनक्लो के बारे में लिख रहे हैं, आपको गहराई से बताता है कि यह प्रोजेक्ट कितनी दूर तक आ गया है। लेकिन यहाँ वह बात है जो इस लेख को विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है। आईबीएम ओपनक्लो को केवल एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एआई के बारे में सोचने के हमारे तरीके में एक व्यापक बदलाव के प्रतीक के रूप में पेश करता है। वे इस बात की खोज करते हैं कि क्या होता है जब वास्तव में उपयोगी एआई तकनीक इंटरनेट संस्कृति से टकराती है। एआई सहायकों का मेमिफिकेशन, यदि आप चाहें। वे क्लॉड बॉट से मोल्ट बॉट से ओपनक्लो तक के पूरे विकास का पता लगाते हैं, यह जांचते हुए कि प्रत्येक संस्करण ने पिछले वाले पर कैसे निर्माण किया और समुदाय की प्रतिक्रिया ने प्रोजेक्ट की दिशा को कैसे आकार दिया। एंटरप्राइज निहितार्थों पर चर्चा करते समय लेख कुछ दिलचस्प क्षेत्रों में प्रवेश करता है। आईबीएम कुछ वास्तव में चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछता है, क्या होता है जब कोई भी व्यक्ति एक सक्षम एआई एजेंट तैनात कर सकता है? जब प्रतियोगियों के पास एक ही एआई टूल तक पहुंच होती है तो उद्यम कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? जब एआई एजेंट स्वायत्त रूप से कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं तो कौन से नए व्यावसायिक मॉडल उभरते हैं? ये अलंकारिक प्रश्न नहीं है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे एंटरप्राइज लीडर अभी सक्रिय रूप से जूझ रहे हैं। वे खेल में ओपन सोर्स गतिशीलता का भी पता लगाते हैं। ओपनक्लो की तीव्र वृद्धि एक छोटे से गिटहब रिपोजिटरी से 145,000 से अधिक सितारों वाले प्रोजेक्ट तक एआई क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व है। आईबीएम नोट करता है कि यह वृद्धि मार्केटिंग खर्च या एंटरप्राइज सेल्स टीमों के माध्यम से नहीं, बल्कि जैविक सामुदायिक अपनाने के माध्यम से हुई। यह एक ऐसी घटना है जिसे एंटरप्राइज रणनीतिकार अनदेखा नहीं कर सकते। आईबीएम के पास पूरी कहानी है और हमारे शो नोट्स में एक लिंक होगा। नोवा, अब यदि आईबीएम का कवरेज पर्याप्त रोमांचक नहीं था तो रास्पबेरी पाई की कहानी बेहतर होती जा रही है। एलॉय, यहीं पर पहुंच एक्सेसिबिलिटी के नजरिए से चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। एडाफ्रूट ने 8 GB रैम के साथ रास्पबेरी पाई 5 पर ओपनक्लो चलाने के बारे में एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत गाइड प्रकाशित की है और यह रातोंरात तैयार किया गया कोई अधूरा ट्यूटोरियल नहीं है। यह एक व्यापक स्टेप बाय स्टेप वॉकथ्रू है जो लगभग $100 की लागत वाले डिवाइस पर ओपनक्लो चलाने के लिए आवश्यक हर चीज को कवर करता है। मुझे इसे विस्तार से बताने दे। सबसे पहले हार्डवेयर सेटअप, विजुअल आउटपुट के लिए टीएफटी डिस्प्ले कनेक्ट करना। कल्पना करें कि आपके रास्पबेरी पाई में एक छोटी स्क्रीन है जो दिखाती है कि आपके एआई एजेंट के साथ क्या हो रहा है। वे तापमान और दबाव सेंसर को कवर करते हैं जो असामान्य लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में फिजिकल कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आकर्षक संभावनाएं खोलते हैं। चाहते हैं कि आपका एआई एजेंट आपके सर्वर रूम में तापमान की निगरानी करे? हो गया। क्या इसे वायुमंडलीय दबाव परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है? संभव है। यूएसबी कैमरा इंटीग्रेशन विशेष रूप से रोमांचक है। हम आपके एआई एजेंट को विजन क्षमताएं देने की बात कर रहे हैं। यह विजुअल इनपुट को देख सकता है, प्रोसेस कर सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट के लिए ईस्पीक और स्पीच टू टेक्स्ट इनपुट के लिए विस्पर स्मॉल के माध्यम से वॉयस क्षमताओं के साथ संयुक्त, आप एक पूरी तरह से वॉयस इंटरेक्टिव एआई सहायक देख रहे हैं जो एक कंप्यूटर पर चल रहा है जो आपकी जेब में फिट बैठता है। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। गाइड दस्तावेज करता है कि कैसे एआई एजेंट ने उचित निर्देश दिए जाने पर सभी आवश्यक फाइलें बनाई, एक वेब पेज बनाया, वाईफाई कॉन्फिगर किया और पूरी तरह से अपने दम पर एडमिन एक्सेस सेटअप किया। यह कोई अतिशयोक्ति या मार्केटिंग कॉपी नहीं है, यही वास्तव में हुआ था। एआई ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रारंभिक प्रॉम्प्ट के अलावा स्क्रैच से रास्पबेरी पाई के लिए एक कार्यात्मक वेब इंटरफेस बनाया। यह एआई का लोकतंत्रीकरण उस तरह से करता है जैसा 6 महीने पहले भी संभव नहीं था। हम शक्तिशाली एआई क्षमताओं को $100 और सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने की बात कर रहे हैं। छात्र, शौकिया, हॉबीइस्ट्स, शिक्षक, छोटे व्यवसाय के मालिक, कोई भी अब महंगे क्लाउड सब्सक्रिप्शन या शक्तिशाली वर्कस्टेशन की आवश्यकता के बिना स्वायत्त एआई एजेंटों के साथ प्रयोग कर सकता है। एडाफ्रूट लर्निंग सिस्टम के पास पूरी गाइड है और हम इसे शो नोट्स में लिंक करेंगे। यदि आप कम लागत वाले एआई परिनियोजन डिप्लॉयमेंट्स में रुचि रखते हैं तो यह पढ़ना अनिवार्य है। नोवा और रास्पबेरी पाई ने अभी एक और भी बड़ी घोषणा की है जो इसे और भी तेज करने वाली है। एलॉय, यह बहुत बड़ा है। द रजिस्टर ने बताया कि रास्पबेरी पाई ने एआई हैट प्लस 2 लॉन्च किया है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हर कोई समझता है कि इसका क्या मतलब है। हैट का अर्थ है हार्डवेयर अटैच्ड ऑन टॉप। यह एक विस्तार बोर्ड है जो आपके रास्पबेरी पाई के ऊपर बैठता है और अतिरिक्त क्षमताएं जोड़ता है। एआई हैट प्लस 2 विशेष रूप से एआई वर्कलोड और हाइलो 10H न्यूरल नेटवर्क एक्सेलरेटर के लिए समर्पित 8GB ऑनबोर्ड रैम जोड़ता है। मुझे इसे परिप्रेक्ष्य में रखने दें। हाइलो 10H एक समर्पित एआई प्रोसेसिंग चिप है। हम एआई कार्यों के लिए रास्पबेरी पाई के मुख्य प्रोसेसर का उपयोग करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक अलग विशेष चिप के बारे में बात कर रहे हैं जिसे विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क इंफरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह उसी तरह की तकनीक है जो उन्नत एआई सिस्टम को शक्ति देती है जो अब $150 के कंप्यूटर के एडॉन के रूप में उपलब्ध है। कागज पर विनिर्देश प्रभावशाली है। समर्पित न्यूरल प्रोसेसिंग, 8GB समर्पित रैम, विशेष रूप से स्थानीय एआई कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया। यह अब केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई मॉडल को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए वास्तव में हार्डवेयर उद्देश्य निर्मित है। अब हर किसी के पास व्यावहारिक प्रश्न यह है कि यह व्यवहार में कैसा प्रदर्शन करता है। शुरुआती बेंचमार्क आशाजनक लेकिन मिश्रित हैं। हैट प्लस पाई 5 पर अच्छी तरह फिट बैठता है और मुख्य सीपीयू को धीमा किए बिना स्थानीय मॉडल चलाने के लिए अतिरिक्त कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करता है। हालांकि अपेक्षाओं को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। आप इस पर 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल नहीं चलाने जा रहे हैं, लेकिन 7 बिलियन पैरामीटर रेंज के मॉडल के लिए जो अधिकांश कार्यों के लिए पर्याप्त सक्षम है, यह गेम चेंजर है। द रजिस्टर के पास मूल्य निर्धारण और अपेक्षित रिलीज तिथियों सहित विनिर्देशों और उपलब्धता पर पूरी कहानी है। एआई हैट प्लस दो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अविश्वसनीय रूप से सस्ती प्लेटफॉर्म पर न्यूरल प्रोसेसिंग लाता है। हम स्थानीय एआई को शौकिया लोगों, शिक्षकों और किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने की बात कर रहे हैं जो समर्पित एआई हार्डवेयर पर हजारों खर्च नहीं करना चाहता। नोवा, अब चलिए ओलामा पर गहरा गोता लगाते हैं। यह एक बड़ा विषय है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम वास्तव में इसका पूरी तरह से पता लगाएं। एलोए, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ओलामा इस हफ्ते बिल्कुल चर्चा में रहा है और मुझे लगता है कि यह समझने में महत्वपूर्ण समय बिताने लायक है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यह लोगों द्वारा एआई क्षमताओं तक पहुँचने के तरीके में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले, ओलामा वास्तव में क्या है, इस पर कुछ संदर्भ। ओलामा एक उपकरण है जो आपको अपनी मशीन पर स्थानीय रूप से बड़े भाषा मॉडल LLMs चलाने देता है। इसे सॉफ्टवेयर की एक परत के रूप में सोचे जो मशीन लर्निंग में PhD या महीनों के सेटअप समय की आवश्यकता के बिना विभिन्न ओपन सोर्स AI मॉडल को डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगर करना और चलाना अविश्वसनीय रूप से आसान बनाता है। ओलामा के पीछे का दर्शन पहुंच एक्सेसिबिलिटी है। आप इसे इंस्टॉल करते हैं, एक आधुनिक कंप्यूटर पर लगभग 2 मिनट लगते हैं और फिर आप ओलामा पुल लामा 3 जैसा एक सरल कमांड चलाते हैं और कुछ मिनट बाद आपके लैपटॉप पर एक स्थानीय AI सहायक चल रहा होता है। यह पर्दे के पीछे सभी जटिल चीजों GPU एक्सेलरेशन, मेमोरी प्रबंधन, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन को संभालता है। अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए यह बस काम करता है। जो बात ओलामा को खास बनाती है वह सादगी और शक्ति का संयोजन है। यह मॉडल की बढ़ती लाइब्रेरी का समर्थन करता है। हम लामा 3, मिस्ट्रल, क्वेन, फी और दर्जनों अन्य के बारे में बात कर रहे हैं और यह सभी गंदे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को संभालता है ताकि आप इसे कॉन्फ़िगर करने के बजाय वास्तव में AI का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस हफ्ते ओलामा टीम ने नए ऐप रिलीज और फीचर अपडेट की घोषणा की जो तलाशने लायक हैं। ब्लॉग ने मॉडल प्रबंधन, आसान कॉन्फ़िगरेशन और प्रदर्शन सुधार के आसपास नई क्षमताओं को कवर किया, लेकिन ईमानदारी से बड़ी कहानी वह पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है जो ओलामा के इर्द गिर्द विकसित हुआ है। 2026 ओलामा ट्यूटोरियल जो इधर उधर घूम रहा है डेवलपर्स के लिए पसंदीदा संसाधन बन गया है। मैं व्यापक गाइडों की बात कर रहा हूं जो बुनियादी सेटअप से लेकर उन्नत कॉन्फ़िगरेशन तक सब कुछ कवर करते हैं, और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह विशेष रूप से ओपनक्लो उपयोगकर्ताओं के लिए क्यों मायने रखता है। यहां मुख्य अंतर्दृष्टि है, ओपनक्लो एक मॉडल प्रदाता के रूप में ओलामा से जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि ओपनएआई या एंथ्रोपिक या गूगल API के लिए भुगतान करने के बजाय, जो भारी उपयोग के लिए प्रति माह सैकड़ों या हजारों डॉलर तक बढ़ सकता है, आप अपने मॉडल स्थानीय रूप से चला सकते हैं। आपके AI एजेंट के पास एक ही मौलिक मॉडल क्षमताओं तक पहुंच है, लेकिन आपका डेटा आपकी मशीन को कभी नहीं छोड़ता है। यह कई कारणों से गेम चेंजर है और मैं प्रत्येक के बारे में वास्तव में स्पष्ट होना चाहता हूं। पहला, गोपनीयता, प्राइवेसी। जब आप ओलामा को स्थानीय रूप से चला रहे होते हैं तो आपकी बातचीत, आपकी फाइलें, आपका डेटा, इसमें से कुछ भी क्लाउड पर नहीं जाता है। यह कई उपयोगकर्ताओं के लिए छोटी बात नहीं है। हम मालिकाना कोड, प्रोप्राइटरी कोड के साथ काम करने वाले डेवलपर्स, संवेदनशील ग्राहक डेटा संभालने वाले व्यवसायों, मरीजों की जानकारी से निपटने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं, गोपनीय केस फाइलों का प्रबंधन करने वाले वकीलों की बात कर रहे हैं। सूची लंबी है। संवेदनशील जानकारी संभालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़े बिना शक्तिशाली AI का उपयोग करने की क्षमता बहुत बड़ी है। दूसरा, लागत, कॉस्ट। एपीआई कॉल जुड़ते जाते हैं। अपेक्षाकृत सस्ते मॉडल के साथ भी, यदि आप एक एआई एजेंट चला रहे हैं जो दिन में सैकड़ों या हजारों कॉल करता है, जो उत्पादन वर्कलोड में आम है, तो मासिक बिल हजारों डॉलर में पहुंच सकता है। ओलामा के साथ आपकी लागतें तय हैं। आप हार्डवेयर के लिए एक बार भुगतान करते हैं और फिर यह हमेशा के लिए मुफ्त है। शौकिया लोगों और छोटी टीमों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। आधारित समाधानों की तुलना में आपका ब्रेक इवन पॉइंट अक्सर भारी उपयोग के कुछ ही महीने होता है। तीसरा, अनुकूलन और प्रयोग, कस्टमाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप अपने स्वयं के मॉडल चलाते हैं तो आपके पास वह लचीलापन होता है जो आपके पास आधारित समाधानों के साथ नहीं होता है। आप अपने डेटा पर मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप अपने हार्डवेयर के आधार पर विभिन्न मॉडल आकारों को आजमा सकते हैं। अपने शक्तिशाली डेस्कटॉप मशीन पर 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल चलाना, लेकिन अपने लैपटॉप पर 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल पर वापस जाना। आप रेट लिमिट या एपीआई कोटा की चिंता किए बिना प्रयोग कर सकते हैं। आप केवल अपने हार्डवेयर द्वारा सीमित हैं, किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा नहीं। लेकिन यहां वह बात है जिस पर मैं वास्तव में जोर देना चाहता हूं। ओपनक्लो और ओलामा के बीच एकीकरण सख्त और अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। हम उन्नत कॉन्फ़िगरेशन, प्रदर्शन अनुकूलन और यहां तक कि मल्टी मॉडल सेटअप पर ट्यूटोरियल देख रहे हैं, जहां अलग अलग कार्यों को उनकी ताकत के आधार पर अलग अलग स्थानीय मॉडलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुछ मॉडल कोडिंग में बेहतर होते हैं, अन्य तर्क रीजनिंग में, अन्य रचनात्मक कार्यों में। ओलामा के साथ आप कई मॉडल चला सकते हैं और कार्यों को उचित रूप से रूट कर सकते हैं। समुदाय भी अविश्वसनीय रहा है। हार्डवेयर अनुकूलता के बारे में सक्रिय चर्चाएं हो रही हैं। सीरीज मैक पर क्या काम करता है, एनवीडिया जीपीयू के साथ विंडोज पर क्या काम करता है, लिनक्स पर क्या काम करता है। लोग इस बारे में सुझाव साझा कर रहे हैं कि कौन से मॉडल अलग अलग उपयोग के मामलों के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, सामान्य मुद्दों का निवारण कर रहे हैं और नए एकीकरण का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप ओलामा के साथ ओपनक्लॉ चला रहे हैं और आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो संभावना है कि समुदाय में किसी ने इसे पहले ही हल कर लिया है और समाधान पोस्ट कर दिया है। अब मैं यहां संतुलित रहना चाहता हूं और कुछ विचारों और संभावित कमियों के बारे में बात करना चाहता हूं। ध्यान देने वाली एक बात, ओलामा मॉडल आमतौर पर क्वांटाइज्ड होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें उपभोक्ता हार्डवेयर पर अधिक आसानी से फिट होने के लिए संकुचित कंप्रेस्ड किया गया है। यह संकुचन कभी कभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाले पूर्ण असंपीड़ित मॉडलों की तुलना में थोड़ा कम गुणवत्ता वाले आउटपुट दे सकता है। कई कार्यों के लिए आप अंतर बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अत्यधिक तकनीकी या विशिष्ट कार्य के लिए जटिल कोड जनरेशन, उन्नत गणितीय तर्क, सूक्ष्म रचनात्मक लेखन, आप कुछ गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय रूप से मॉडल चलाने का मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए उन तरीकों से जिम्मेदार हैं जिन्हें आधारित समाधान आपके लिए संभालते हैं। क्लाउड एपीआई के साथ प्रदाता अपडेट और सुरक्षा पैच को स्वचालित रूप से संभालता है। ओलामा के साथ आपको स्वयं अपडेट के शीर्ष पर रहने की आवश्यकता है। यह कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। ओलामा टीम अपडेट को आसान बनाने का अच्छा काम करती है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात जो बताने लायक है, हार्डवेयर आवश्यकताएं बहुत मायने रखती हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग कम आंकते हैं। 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल चलाना 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल चलाने से मौलिक रूप से अलग प्रस्ताव है। पर्याप्त एकीकृत मेमोरी वाला एक आधुनिक मैक, मैं कम से कम 16 GB, यदि संभव हो तो 32 GB की अनुशंसा करूंगा, छोटे मॉडलों को आसानी से संभाल सकता है। बड़े मॉडलों के लिए आपको गंभीर जीपीयू शक्ति की आवश्यकता है। पर्याप्त वर्म वाले एनवीडिया जीपीयू मानक हैं। हालांकि सीरीज चिप्स के लिए ओलामा के ऑप्टिमाइजेशन के कारण एप्पल सिलिकॉन आश्चर्यजनक रूप से सक्षम है। अच्छी खबर यह है कि ओलामा एप्पल सिलिकॉन के लिए अनुकूलित है, इसलिए यदि आपके पास सीरीज चिप वाला हालिया मैक है तो आप अपनी अपेक्षा से बेहतर स्थिति में हैं। इन चिप्स में न्यूरल इंजन एआई वर्कलोड को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संभालता है। नोवा और क्लाउड कोड, क्लॉथ कोड प्लस ओलामा संयोजन बहुत चर्चा पैदा कर रहा है। एलॉय, यह बहुत बड़ा है और मैं वास्तव में इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। इस हफ्ते कई ट्यूटोरियल आए कि स्थानीय ओलामा मॉडल के साथ क्लाउड कोड कैसे चलाया जाए, और यह डेवलपर्स के लिए जो संभव है उसमें एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे समझाने दे कि इसका क्या मतलब है। क्लाउड कोड कोडिंग सहायक के रूप में एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई मॉडल का कार्यान्वयन है। इसे व्यापक रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोडिंग सहायकों में से एक माना जाता है, जो जटिल कोडबेस को समझने, सुधार का सुझाव देने, नया कोड लिखने और डिबगिंग और रिफैक्टरिंग में मदद करने में सक्षम है। अब पारंपरिक रूप से क्लाउड कोड एंथ्रोपिक के क्लाउड एपीआई से जुड़ा था। आप अपना कोड एंथ्रोपिक के सर्वर पर भेजते थे, वे इसे प्रोसेस करते थे और सुझाव वापस भेजते थे। यह बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण कमियां हैं। आपका कोड आपकी मशीन छोड़ देता है और भारी उपयोग के साथ यह महंगा हो सकता है। लोग अब जो समझ रहे हैं वह यह है कि आप इसके बजाय क्लाउड कोड को अपने स्थानीय ओलामा एंडपॉइंट पर इंगित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको एंथ्रोपिक की क्लाउड तकनीक मिलती है, वही तकनीक जो दुनिया के सबसे सक्षम कोडिंग सहायकों में से एक को शक्ति प्रदान करती है, पूरी तरह से आपके अपने हार्डवेयर पर स्थानीय रूप से चल रही है। कोई क्लाउड एपीआई कॉल नहीं, आपकी मशीन छोड़ने वाला कोई डेटा नहीं, आपके स्वयं के कंप्यूट के लिए भुगतान करने के अलावा कोई आवर्ती लागत नहीं। सेटअप में क्लाउड कोड को बैकएंड के रूप में अपने स्थानीय ओलामा एंडपॉइंट का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर करना शामिल है। मैक और विंडोज दोनों के लिए गाइड उपलब्ध हैं और समुदाय संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहा है। डेवलपर्स प्रभावशाली परिणामों की रिपोर्ट कर रहे हैं। स्थानीय मॉडल से कोड पूर्णता, रिफैक्टरिंग सहायता और यहां तक कि जटिल डिबगिंग मदद प्राप्त करना। मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि आपका ओलामा मॉडल कोडिंग कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त सक्षम है। छोटे मॉडल जटिल रिफैक्टरिंग या बड़े कोडबेस को समझने में संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन मध्यम आकार के मॉडल, विशेष रूप से कोडिंग के लिए फाइनट्यून किए गए मॉडल जैसे कोडलामा और कुछ क्वेन वेरिएंट, आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक व्यावहारिक सुझाव, यदि आप इसे सेटअप कर रहे हैं तो ऐसे मॉडल से शुरू करें जो कोडिंग कार्यों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। कोडलामा स्पष्ट विकल्प है, इसे सचमुच इसके लिए डिजाइन किया गया है। Qwen 2.5 कोडर एक और लोकप्रिय विकल्प है जिसने काफी आकर्षण हासिल किया है। फिर जैसे जैसे आप अधिक सहज होते जाते हैं, आप प्रदर्शन और संसाधन उपयोग के बीच सही संतुलन खोजने के लिए अन्य मॉडलों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो गौर करने लायक है, यह सेटअप आपको वास्तविक फॉलबैक क्षमता देता है। यदि क्लाउड कोड की क्लाउड सेवा डाउन हो जाती है, जो कभी कभी होता है, या यदि आप किसी भी कारण से इंटरनेट का उपयोग खो देते हैं, तो भी आप काम कर सकते हैं। आपका स्थानीय एआई सहायक चलता रहता है। अविश्वसनीय कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के डेवलपर्स के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो सिर्फ रिडंडेंसी चाहता है, यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। हम कुछ दिलचस्प हाइब्रिड दृष्टिकोण भी देख रहे हैं, जहां डेवलपर्स गोपनीयता संवेदनशील कार्यों के लिए स्थानीय मॉडल और अधिकतम क्षमता की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए क्लाउड मॉडल का उपयोग करते हैं। यह दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा है। नौवा, अब चलिए सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है और मैं इसे वह ध्यान देना चाहता हूँ जिसका यह हकदार है। एलॉय, बिल्कुल। और मुझे पता है कि हम कभी कभी एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगते हैं, लेकिन यह वास्तव में गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते सिस्को दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग और सुरक्षा कंपनियों में से एक ने AI एजेंटों के विस्तारित खतरे के परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। यह कोई मामूली सुरक्षा शोधकर्ता नहीं है जो शून्य में चिल्ला रहा है। यह सिस्को है, एक ऐसी कंपनी जो सचमुच इंटरनेट के अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर को शक्ति प्रदान करती है। यह कह रही है कि यह मायने रखता है। हम हमेशा कहते हैं कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे AI एजेंट अधिक स्वायत्त और सक्षम होते जा रहे हैं, सुरक्षा शोधकर्ता गंभीर ध्यान दे रहे हैं। खतरे का परिदृश्य अधिकांश संगठनों के अनुकूल होने की तुलना में तेजी से विकसित हो रहा है। सिस्को रिपोर्ट संभावित हमले के वैक्टरों को देखती है। क्या होता है जब एजेंटों के पास बहुत अधिक पहुंच होती है और उद्यमों के लिए शमन रणनीतियों मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को देखती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वे इसके बारे में डराने वाले नहीं हैं। वे एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि यह तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है, लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसे जिम्मेदारी से संभालने की आवश्यकता है। रिपोर्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से लेकर जहां हमलावर विशेष रूप से तैयार किए गए इनपुट के माध्यम से AI एजेंटों में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं, टूल दुरुपयोग तक, जहां एजेंटों को उनकी क्षमताओं का अनुचित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन परिदृश्यों तक सब कुछ कवर करती है जहां संवेदनशील जानकारी अनजाने में या दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रसारित की जाती है। मुझे सबसे दिलचस्प बात AI एजेंट सुरक्षा के बारे में सोचने का उनका ढांचा लगा। वे यह स्थिति नहीं लेते हैं कि हमें इन उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय वे कहते हैं कि उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें। समझें कि आप क्या पहुंच दे रहे हैं, उचित सुरक्षा उपाय लागू करें और डिफेंस इन डेप्थ के बारे में सोचें। यह किसी भी प्रकार के उत्पादन वातावरण में ओपन क्लॉ चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने योग्य है। एक बात जिस पर रिपोर्ट ने जोर दिया और मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से ओपन क्लॉ उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक है, न्यूनतम विशेषाधिकार लीस्ट प्रिविलेज का महत्व। AI एजेंट सेटअप करते समय इसे अपने सिस्टम तक व्यापक पहुंच देना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है। आखिरकार आप चाहते हैं कि यह चीजें करने में सक्षम हो, है ना? लेकिन हमलावर बिल्कुल इसी की तलाश में हैं। सिफारिश कम से कम अनुमतियों के साथ शुरू करने और विशिष्ट कार्यों के लिए केवल आवश्यकतानुसार अधिक जोड़ने की है। यह वही सिद्धांत है जिसने दशकों से कंप्यूटर सुरक्षा को निर्देशित किया है, लेकिन इस संदर्भ में इसे दोहराना उचित है। रिपोर्ट निगरानी और लॉगिंग की आवश्यकता के बारे में भी बात करती है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका AI एजेंट क्या कर रहा है, कब कर रहा है और वह किस डेटा तक पहुंच रहा है। यह सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह जवाबदेही और समस्या निवारण ट्रबलशूटिंग के बारे में भी है। जब कुछ गलत हो जाता है और जटिल प्रणालियों में कुछ न कुछ अंततः गलत होता ही है, तो आपको वापस देखने और यह समझने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि क्या हुआ था। नौवा, पालो आल्टो नेटवर्क्स ने भी कुछ वास्तव में चिंताजनक निष्कर्षों के साथ अपनी बात रखी। एलॉय, पान यानी पालो आल्टो नेटवर्क्स ने AI एजेंटों को 2026 का सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा इनसाइडर थ्रेट बताते हुए शोध प्रकाशित किया। और देखिए, मुझे पता है कि यह डरावना लगता है। बहुत सी सुरक्षा रिपोर्टें ध्यान आकर्षित करने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं, लेकिन जब आप इसमें गहराई से उतरते हैं तो उनका तर्क वास्तव में काफी ठोस होता है और मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से लेना उचित है। तर्क इस प्रकार है, जब आप एआई एजेंट को अपने सिस्टम तक पहुंच देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता का एक नया वर्ग बना रहे होते हैं जो स्वायत्त रूप से कार्य कर सकता है, संभावित रूप से कई प्रणालियों में, संभावित रूप से बहुत तेजी से। यदि वह एजेंट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमले के माध्यम से समझौता कर लिया जाता है और वे तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं, या यदि यह बग या गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करता है, तो नुकसान महत्वपूर्ण हो सकता है और बहुत तेजी से हो सकता है। हम एक मानवीय इंसाइडर की बात नहीं कर रहे हैं जिसे कुछ गलत करने के लिए राजी करने की आवश्यकता है। हम एक स्वायत्त प्रणाली की बात कर रहे हैं जो अनजाने में कुछ गलत कर सकती है और इसे एक इंसान की तुलना में सैकड़ों गुना तेजी से कर सकती है। रिपोर्ट वास्तविक दुनिया के हमले के परिदृश्यों को देखती है और एजेंटिक एआई परिनियोजन को सुरक्षित करने के लिए ठोस सिफारिशें करती है। यह डर फैलाना नहीं है, यह उन लोगों के लिए व्यावहारिक सलाह है जो वास्तव में इन प्रणालियों को तैनात कर रहे हैं। वे न्यूनतम विशेषाधिकार पहुंच, निगरानी और लॉगिंग और एआई विशिष्ट परिदृश्यों के लिए घटना प्रतिक्रिया योजना, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग जैसी चीजों को कवर करते हैं। एक बात जो मुझे अलग लगी, वे एआई विशिष्ट घटना प्रतिक्रिया योजनाओं की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। पारंपरिक सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया पूरी तरह से एक एआई एजेंट के उन तरीकों से अप्रत्याशित व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है जो इंसान नहीं करेंगे। आपको प्लेबुक की आवश्यकता है जो उन अनूठे तरीकों पर विचार करती है जिनसे एआई एजेंट समस्याएं पैदा कर सकते हैं, और वे अनूठे तरीके जिनसे उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। रिपोर्ट हर समय यह समझने के महत्व पर भी जोर देती है कि आपका एआई एजेंट वास्तव में क्या कर रहा है। यह पारंपरिक लॉगिंग से परे है, आपको निर्णय लेने की प्रक्रिया में दृश्यता, विजिबिलिटी की आवश्यकता है, न कि केवल आउटपुट में। यदि आप व्यावसायिक संदर्भ में ओपन क्लॉ चला रहे हैं या व्यक्तिगत संदर्भ में भी जहां सुरक्षा मायने रखती है, तो यह रिपोर्ट अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, और हमारे शो नोट्स में एक लिंक होगा। नोवा, अब कुछ बिल्कुल अलग के लिए। यह वास्तव में विचित्र है और मुझे इसे दो बार फैक्ट चेक करना पड़ा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एलॉय, ठीक है, मेरा ध्यान आपकी ओर है, यह क्या है? नोवा, वैज्ञानिक सक्रिय रूप से अपने स्वयं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओपन क्लॉ चैट बॉट्स को सुन रहे हैं। एलॉय, मुझे क्षमा करें, क्या? नोवा, आपने मुझे सुना? एआई एजेंटों ने, जिसमें ओपन क्लॉ इंस्टेंस भी शामिल हैं, अपना स्वयं का सोशल नेटवर्क विकसित किया है। वे अब केवल इंसानों के साथ चैट नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं। और इसे सुनिए, वे अपने स्वयं के प्रीप्रिंट सर्वर पर एआई जनरेटेड रिसर्च पेपर भी प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे एआई द्वारा लिखे गए वास्तविक शैक्षणिक पेपर एआई द्वारा चलाए जा रहे सर्वर पर पोस्ट किए गए, और कुछ मामलों में अन्य एआई द्वारा समीक्षा किए गए। एलॉय, ठीक है, मुझे यहाँ एक पल चाहिए। यह वास्तव में असली सरियल है। मैं सालों से एआई को कवर कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे अप्रत्याशित विकास देखे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से कुछ और है। नोवा, है ना? सोचिए इसका क्या मतलब है। हम अब केवल एआई सहायकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एआई एजेंटों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, समुदाय बना रहे हैं, कार्यों पर सहयोग कर रहे हैं और शोध भी कर रहे हैं। यह एक आकर्षक और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भविष्य की झलक है कि स्वायत्त एआई एजेंटों के साथ भविष्य कैसा दिख सकता है। एआई सुरक्षा और शासन, गवर्नेंस के बारे में हम कैसे सोचते हैं, इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। यदि एआई एजेंट एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, तो क्या होता है जब वे उन लक्ष्यों के लिए अनुकूलन करना शुरू करते हैं जो मानवीय हितों के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं? यह उस तरह की चीज है जो साइंस फिक्शन हुआ करती थी, और अब यह वास्तविक समय में हो रही है। वैज्ञानिक जो इसकी निगरानी कर रहे हैं कहते हैं कि यह उभरते हुए एआई व्यवहारों के बारे में अमूल्य डेटा प्रदान कर रहा है, ऐसे व्यवहार जो स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किए गए थे लेकिन एजेंटों के बीच बातचीत से उत्पन्न हुए थे। यह शोध के नजरिए से रोमांचक और सुरक्षा के नजरिए से वास्तव में चिंताजनक दोनों है। लेकिन यहाँ वह बात है जो मुझे वास्तव में प्रभावित करती है। हम एक एआई संचालित अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत देख रहे हैं। एआई द्वारा लिखे गए पेपर, एआई द्वारा प्रबंधित सर्वर पर पोस्ट किए गए, संभावित रूप से अन्य एआई प्रणालियों द्वारा उद्धृत। यह उस तरह की चीज है जिसकी साइंस फिक्शन ने कल्पना की थी लेकिन कभी इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं की थी। नौवां, चलिए कुछ अधिक व्यावहारिक विषयों पर गियर बदलते हैं। एलॉय, निश्चित रूप से, चलिए इसे वापस जमीन पर लाते हैं। नौवां, रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल आते जा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित होते देखना अविश्वसनीय रहा है। एलॉय, गंभीरता से, समुदाय इस हफ्ते चर्चा में रहा है। बुनियादी सेटअप से लेकर उन्नत कॉन्फ़िगरेशन तक सब कुछ कवर करने वाले कई रास्पबेरी केंद्रित ट्यूटोरियल थे। एक विशेष रूप से लोकप्रिय गाइड ने रास्पबेरी पाई 4 पर एलएलएम्स चलाने को कवर किया, 5 पर भी नहीं, और कुछ आश्चर्यजनक रूप से सक्षम मॉडलों से ठीक ठाक प्रदर्शन प्राप्त करने में सफल रहा। याद रखें, पाई 4 2019 में आया था। तकनीकी वर्षों में वह प्राचीन है, और फिर भी अब आप उस पर उपयोगी एआई मॉडल चला सकते हैं। एक अन्य गाइड ने 2026 में रास्पबेरी पाई के लिए ओपन सोर्स एलएलएम्स के लिए, जिसे वे अंतिम गाइड कह रहे हैं, उसे देखा। उन्होंने दर्जनों मॉडलों का मूल्यांकन किया, मैं गंभीर तुलनात्मक विश्लेषण की बात कर रहा हूं, और अपनी शीर्ष पसंद लेकर आए, मेटा लामा 3.18B इंस्ट्रक्ट, क्विन 3.8B और थडम जीएलएम 4.9B 0.4.1.4। ये सभी मॉडल हैं जो उचित प्रदर्शन के साथ पाए हार्डवेयर पर वास्तव में चल सकते हैं, खासकर यदि आपके पास पाए 5 का 8GB संस्करण है। स्थानीय एआई के लिए प्रवेश की बाधा कम होती जा रही है। एक साल पहले एक सक्षम एलएलएम चलाने के लिए गंभीर हार्डवेयर की आवश्यकता होती थी। हम जीपीयू निवेश में हजारों डॉलर की बात कर रहे थे। अब आप इसे एक कंप्यूटर पर कर सकते हैं जो आपकी जेब में फिट बैठता है। सचमुच शिक्षा, पहुंच और गोपनीयता के लिए निहितार्थ बड़े हैं। एक बात जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं, एआई हैट प्लस के साथ रास्पबेरी पाई 5 इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है। उस मूल्य बिंदु पर समर्पित न्यूरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होना ऐसी संभावनाएं खोलता है जो पहले उपलब्ध नहीं थी। हम उन मॉडलों को चलाने की बात कर रहे हैं जिन्हें चलाने के लिए सिर्फ एक साल पहले एक समर्पित जीपीयू वर्कस्टेशन की आवश्यकता होती, वह भी $150 के कंप्यूटर पर। यह उल्लेखनीय है। नौवा, समाप्त करने से पहले एक और बात, मैं एंटरप्राइज रुचि के बारे में बात करना चाहता हूं। एलॉय, आपकी क्या राय है? नौवा, हम एंटरप्राइज रुचि को नाटकीय रूप से तेज होते देख रहे हैं। आईबीएम के कवरेज, सिस्को के सुरक्षा शोध और पालो ऑल्टो के खतरे के विश्लेषण के बीच बड़े खिलाड़ी ओपनक्लॉ को गंभीरता से ले रहे हैं। यह प्रोजेक्ट के परिपक्व होने का संकेत है। एलॉय, बिल्कुल। और आप जानते हैं क्या, हम बिल्कुल यही देखना चाहते थे। ओपनक्लॉ की शुरुआत इस जंगली प्रयोग के रूप में हुई थी, एक एआई एजेंट जो सचमुच चीजें कर सकता था, न कि केवल चैट। लोगों ने सोचा कि यह अच्छा है, लेकिन एंटरप्राइज परिप्रेक्ष्य से इसे गंभीरता से लेना मुश्किल था। बड़ी कंपनियां आमतौर पर मीम संस्कृति के बारे में हास्य की भावना के साथ किसी के गैरेज में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करती हैं। और अब देखिए, बड़ी कंपनियां इसके बारे में लिख रही हैं, इसे सुरक्षित कर रही हैं, इसके इर्द गिर्द उपकरण बना रही हैं और इसके जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रही हैं। यह वही प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्ट्री है जिसके बारे में हमने एपिसोड एक में बात की थी, और यह किसी की अपेक्षा से अधिक तेजी से हो रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी तेजी से। यहाँ दिलचस्प तनाव शौकिया जड़ों और एंटरप्राइज वास्तविकता के बीच है। ओपनक्लो एक अकेले व्यक्ति पीटर स्टाइनबर्गर पीटर स्टेनबर्गर द्वारा बनाया गया था, मीम संस्कृति से प्रेरित और लाखों आकस्मिक उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाया गया है जो इसके लचीलेपन और हास्य की सराहना करते हैं। लेकिन अब बड़ी कंपनियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे तैनात किया जाए। यह एक आकर्षक गतिशीलता है, और मुझे लगता है कि हम उन दो दुनियाओं के टकराने के साथ बहुत सारे दिलचस्प विकास देखने जा रहे हैं। इस हफ्ते की खबरों ने उस तनाव को स्पष्ट रूप से दिखाया। एक तरफ आपके पास शौकिया और उत्साही लोग थे जो रास्पबेरी पिस और स्थानीय मॉडलों के साथ अद्भुत काम कर रहे थे, मामूली हार्डवेयर पर जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। वे एआई को सुलभ बनाने, उन उपकरणों पर मॉडल चलाने के बारे में उत्साहित थे जिनकी कीमत मासिक कॉफी की आदत से कम है। दूसरी ओर आपके पास सिस्को और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स गंभीर एंटरप्राइज सुरक्षा शोध प्रकाशित कर रहे थे, अंदरूनी खतरों और रक्षा ढांचे और घटना प्रतिक्रिया योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। दोनों दृष्टिकोण मान्य हैं, और इस पारिस्थितिकी तंत्र के ठीक से परिपक्व होने के लिए दोनों आवश्यक हैं। अच्छी खबर यह है कि बातचीत हो रही है। 5 महीने पहले कोई भी एआई एजेंट सुरक्षा के बारे में नहीं लिख रहा था। अब हमारे पास कई प्रमुख सुरक्षा फर्में अपनी राय दे रही हैं। यह प्रगति है। इसका मतलब है कि तकनीक महत्व के उस स्तर तक पहुंच गई है जहां लोग इन समस्याओं के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता महसूस करते हैं। नोवा, जाने से पहले क्लाउड कोड और ओलामा पर एक और नोट। एलॉय, हाँ, मुझे सच में लगता है कि यह हफ्ते की कहानी है, शायद महीने की कहानी भी। ओलामा के साथ स्थानीय रूप से क्लाउड कोड चलाने की क्षमता खेल बदल देती है। हमने पहले भी एकीकरण देखे हैं, लेकिन यह अलग लगता है। यह सिर्फ एक नवीनता नहीं है, यह वास्तव में वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में प्रयोग करने योग्य है। लोग शानदार परिणामों की रिपोर्ट कर रहे हैं और गोपनीयता के निहितार्थ बहुत बड़े हैं। अब आपके पास एक कोडिंग सहायक हो सकता है जो क्लाउड में किसी भी चीज की तरह सक्षम है, लेकिन आपका कोड आपकी मशीन को कभी नहीं छोड़ता है। यह स्थानीय एआई का वादा है, और इस हफ्ते हमने इसे सार्थक तरीके से वितरित होते देखा। इसके बारे में उत्साहित होने लायक है। नोवा, चलिए सेल्फ होस्टिंग आंदोलन के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में गति पकड़ रहा है। एलॉय, यह मेरे पसंदीदा विषयों में से एक है, और मुझे लगता है कि यह आम तौर पर मिलने वाले ध्यान से अधिक का हकदार है। सेल्फ होस्टिंग हमेशा नियंत्रण के बारे में रही है, बड़ी तकनीकी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना। लेकिन ओपनक्लो के साथ यह कुछ और में विकसित हो गया है। अब यह आपके अपने एआई के बारे में है जो वास्तव में उपयोगी काम करने में सक्षम है, न केवल एक जिज्ञासा बल्कि एक वास्तविक उत्पादकता उपकरण। सेल्फ होस्ट वीकली न्यूज़लेटर ने इसे पूरी तरह से कैद किया। वे उन लोगों की रुचि में वृद्धि देख रहे हैं जो अपने स्वयं के एआई सहायकों को चलाना चाहते हैं। अपील स्पष्ट है, आपको एआई क्षमता मिलती है, लेकिन आप अपने डेटा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं। आपकी बातचीत, आपकी फाइलों या आपके प्रश्नों का क्या होता है, इसकी कोई चिंता नहीं। यह सब आपके हार्डवेयर पर आपके नियंत्रण में है। दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ होस्टिंग में आने वाले लोगों की विविधता है। यह अब केवल तकनीकी लोगों टेचीज तक सीमित नहीं है, और मैं यह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो तकनीकी लोगों से प्यार करता है। हम ऐसे शिक्षकों को देख रहे हैं जो छात्रों के डेटा के अपने नियंत्रण से बाहर जाने की चिंता किए बिना पाठ योजना लेसन प्लानिंग के लिए एआई सहायक चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर अनुपालन वर्कफ्लो की तलाश कर रहे हैं। छोटे व्यवसाय के मालिक जो क्लाउड सब्सक्रिप्शन के खर्च के बिना एआई की शक्ति चाहते हैं। हर तरह के लोग जो गोपनीयता की परवाह करते हैं और अपना एआई सहायक चाहते हैं। रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल जो हम देख रहे हैं, वे इसे सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाते हैं। बाधा कम होती जा रही है और समुदाय अधिक मददगार होता जा रहा है, और अर्थशास्त्र भी आकर्षक है। चल रहे एपीआई लागतों के मुकाबले एक बार की हार्डवेयर खरीद भारी उपयोगकर्ताओं के लिए, जो प्रतिदिन दर्जनों या सैकड़ों एजेंट कॉल करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अक्सर केवल कुछ महीने होता है। उसके बाद आप अधिक गोपनीयता और नियंत्रण रखते हुए पैसे बचा रहे हैं। यह एक शक्तिशाली संयोजन है। नोवा और एलएम स्टूडियो को भी अधिक ध्यान मिल रहा है। एलॉय, हाँ, एलएम स्टूडियो एक और उपकरण है जो आकर्षण प्राप्त कर रहा है, और यह उल्लेख के योग्य है। यह अनिवार्य रूप से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो आपको एक अच्छे जीयूआई और आसान मॉडल प्रबंधन के साथ विभिन्न एलएलएम मॉडल स्थानीय रूप से चलाने देता है। इसे ओलामा जैसे कमांड लाइन टूल के उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प के रूप में सोचें। एलएम स्टूडियो के बारे में अच्छी चीजों में से एक यह है कि यह बॉक्स से बाहर मॉडलों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, और यह मॉडल फाइलों को बुद्धिमानी से संभालता है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मॉडल कितनी डिस्क स्थान का उपयोग कर रहा है, आप वास्तव में किन का उपयोग कर रहे हैं, और आप आसानी से उन मॉडलों को हटा सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। यह स्थानीय मॉडलों के प्रबंधन से बहुत सारी जटिलता को दूर करता है। इस हफ्ते की बड़ी खबर यह है कि लोग यह पता लगा रहे हैं कि क्लाउड कोड के साथ एलएम स्टूडियो मॉडल का उपयोग कैसे किया जाए। यह स्थानीय एआई पहेली का एक और टुकड़ा है। एलएम स्टूडियो विभिन्न मॉडलों को ब्राउज करना, डाउनलोड करना और चलाना अविश्वसनीय रूप से आसान बनाता है। आप दर्जनों मॉडलों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से आपके उपयोग के मामले के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इंटरफेस कमांड लाइन टूल की तुलना में बहुत अधिक सुलभ है, जो प्रवेश की बाधा को काफी कम करता है। ओपनक्लो उपयोगकर्ताओं के लिए एलएम स्टूडियो एकीकरण का अर्थ और भी अधिक लचीलापन है। आप ओपनक्लो को एलएम स्टूडियो के स्थानीय सर्वर से जोड़ सकते हैं, जिससे आपको उन मॉडलों तक पहुंच मिलती है जिन्हें आपने एलएम स्टूडियो के माध्यम से डाउनलोड किया है। यह स्थानीय एआई उपकरणों के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र में एक और विकल्प है। यहां मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि स्थानीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से परिपक्व हो रहा है। एक साल पहले स्थानीय एआई के साथ सेटअप होना अपने आप में एक प्रोजेक्ट था। आपको तकनीकी ज्ञान, धैर्य और समस्या निवारण की इच्छा की आवश्यकता थी। अब कई पॉलिश किए गए उपकरण हैं, ओलामा, एलएम स्टूडियो और अन्य, जो इसे बुनियादी कंप्यूटर कौशल वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा नवाचार को चला रही है और उपयोगकर्ताओं को लाभ हो रहा है। नोवा, एक और बात, एंटरप्राइज सुरक्षा एक प्रमुख विषय बन रही है। एलॉय, यह वास्तव में है। हमने पहले सिस्को और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का उल्लेख किया था, लेकिन और भी बहुत कुछ है। फेडरल रजिस्टर ने सरकार में एआई के संबंध में जानकारी के लिए एक अनुरोध प्रकाशित किया, जो बताता है कि नियामक उच्चतम स्तरों पर एआई शासन के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। और कई सुरक्षा फर्मों ने अकेले इस हफ्ते एजेंटिक एआई खतरों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है। हम इस क्षेत्र में वास्तविक संस्थागत ध्यान देख रहे हैं। साझा सूत्र यह है कि उद्यम अपने एआई परिनियोजन को सुरक्षित करने के लिए दौड़ रहे हैं। वे सुनिश्चित नहीं हैं कि इसे ठीक से कैसे किया जाए। सर्वोत्तम अभ्यास अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत है। पीछे छूट जाने का डर वास्तविक है। कोई भी वह कंपनी नहीं बनना चाहता जिसने डेटा लीक होने तक एआई सुरक्षा को नजरअंदाज किया। जो उत्साहजनक है वह यह है कि बातचीत, क्या हमें एआई एजेंटों का उपयोग करना चाहिए, इसे बदलकर हम उन्हें सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करें, पर जा रही है। यह प्रगति है। इसका मतलब है कि तकनीक शुरुआती अपनाने वाले चरण से आगे बढ़कर मुख्यधारा की चेतना में चली गई है। लोग अब यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि एआई एजेंट महत्वपूर्ण हैं या नहीं, वे सवाल कर रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदारी से कैसे लागू किया जाए। ओपनक्लो उपयोगकर्ताओं के लिए इसका मतलब कुछ चीजें हैं। पहला, भविष्य के रिलीज में अधिक सुरक्षा केंद्रित सुविधाओं की अपेक्षा करें। प्रोजेक्ट ने हमेशा सुरक्षा की परवाह की है, लेकिन एंटरप्राइज रुचि उस विकास को तेज करेगी। दूसरा, समुदाय से अधिक टूलिंग और सर्वोत्तम प्रथाओं के उभरने की अपेक्षा करें। जब उद्यम किसी तकनीक को अपनाते हैं तो वे उसे सुरक्षित और अधिक मजबूत बनाने में निवेश करते हैं, और अक्सर उन सुधारों से सभी को लाभ होता है। नौवा, साइन ऑफ करने से पहले मैं विशेष रूप से ओपनक्लो उपयोगकर्ताओं के लिए ओलामा के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ। एलॉय, निश्चित रूप से, वह क्या है? नौवा, सीखने की अवस्था, लर्निंग कर्व, है, निश्चित रूप से, लेकिन समुदाय ने अविश्वसनीय संसाधन बनाए हैं। 2026 ट्यूटोरियल जिसका हमने उल्लेख किया वह व्यापक है, लेकिन जल्दी शुरू करने के लिए छोटे गाइड भी हैं। और ओलामा टीम सामुदायिक प्रतिक्रिया के प्रति उत्तरदायी रही है। वे ऐसी विशेषताएं जोड़ रहे हैं जो लोग वास्तव में चाहते हैं, न कि केवल वह जो तकनीकी रूप से अच्छा लगता है। यदि आप स्थानीय मॉडल प्रदाता के साथ ओपनक्लो चलाने के बारे में कशमकश में हैं, तो अब इसे आजमाने का एक शानदार समय है। उपकरण परिपक्व हो गए हैं, प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन ठोस है, और यदि आप फंस जाते हैं तो एक मददगार समुदाय है। इसके अलावा लागत बचत और गोपनीयता लाभ वास्तविक हैं, वे सैद्धांतिक नहीं हैं। स्थानीय एआई क्रांति आ नहीं रही है, यह यहाँ है। सवाल यह है कि क्या आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? एलॉय, यह समाप्त करने के लिए एक शानदार नोट है। इस हफ्ते ने हमें दिखाया कि स्थानीय एआई वास्तव में आ गया है। हमारे पास प्रमुख एंटरप्राइज कवरेज, किफायती हार्डवेयर, परिष्कृत टूलिंग और सब कुछ आगे बढ़ाने वाला एक जीवंत समुदाय है। सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा उन्हें गंभीरता से संबोधित किया जा रहा है, और पहुंच का पहलू मजबूत होता जा रहा है। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। हम आपसे अगली बार मिलेंगे। नौवा, अगली बार मिलते हैं। एंड।